ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரம் பிரேமாஸ்பத் பரமாஸ்வரூப் ஸ்ரோதா பந்து, சௌவேத் ஆசித் மாசித் ஏக் ஸ்ருதி ஹை. ஹே சௌம்ய, पहले सदी था, पहले पहले और बाद में क्या काल का निर्णय किया गया? सौमेद मग्रमासी पहले हैं, पहले सद था, फिर असद भी कहा बौद्धों ने, असत था, तो सत था कि असत था? सत था, क्योंकि मैं ही प्रमाण हूं, नाश भी मैं नहीं हूं, यह कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि जो कहेगा वो बोलेगा, और बोल तो उसी का हुआ, तो कह नहीं सकता, प्रमाण है उसमें अपने आप है कि मैं सदा रहता हूं और अप्रिय नहीं हूं, अपना प्यारा हूं। तो सौमेद मग्रमासी जैसे घड़ा एक बनाया गया, तो घड़ा बनाने में मिट्टी काम आई, मिट्टी पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, बीच में भी मिट्टी ही है, वो घड़ा दिखाई देता है, आकृति मात्र दिखाई देती है, मिट्टी ही है। अच्छा, और स्वर्ण, स्वर्ण का आभूषण बनाया गया, तो असल में स्वर्ण ही है, आभूषण नहीं है, वो स्वर्ण है। क्यों अंगूठी बनाई गई सोने की? तो आकृति जरूर अंगूठी हो गई, लेकिन स्वर्ण तो रहा ही, स्वर्ण पहले भी है, बाद में भी रहा, मध्य में भी है। ये चादव ये चांदते मध्य भी सत भवती, जो आज में और अंत में घड़ा जे फूटेगा तो मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी हो जाएगी, अंगूठी गलाई जाएगी तो स्वर्ण हो जाएगी, न गलाई जाएगी तो भी स्वर्ण है, न मिट्टी का घड़ा फूटे तो भी मिट्टी है, लोहे का बर्तन हो लोहा न गलाया जाए तो भी लोहे का है, लोहा पहले था बाद में रहेगा और बीच में भी लोहा ही है, यही समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये समझ में आता है कि पहले सत था, बाद में भी सत रहेगा, क्योंकि मैं ही प्रमाण हूं, मैं पहले था बाद में रहूंगा, हमारी कभी मृत्यु नहीं है, मैं अमर हूं, मैं शब्द अमर अजर है, कभी भी मृत्यु नहीं होती, मैं की मैं बोलता हूं, चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, मैं में कोई क्रिया नहीं होती, मैं कभी भी मरता नहीं है। जैसे कल बताया गया था, अक्षर तत्व से उदय हुआ, सारी सृष्टि बनी, अक्षर तत्व क्या है? परमात्मा, परमात्मा है, आत्मा ब्रह्म की एकता ही ब्रह्म का सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है, आत्मा जो हम में है वही सब में है, ब्रह्म की एकता और आत्मा की एकता एक है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम हैं, हमारा कभी मरण नहीं होता, तो आपका भी नहीं होगा। इसी तरह से सब चींटी से लेकर चूहा और हाथी तक अगर अमर है, जो हम ही हैं तो अमर, अगर हैं हम तो सब अमर हैं। तो हम जो व्यवहार करते हैं, अपने लिए जो चाहते हैं, वो क्यों न कह चाहें। हम जो चाहते हैं वो सब चाहते हैं। जो हमारे प्रति व्यवहार होगा वो हम पसंद करेंगे, वही सब पसंद करेंगे। तो दूसरे के प्रति व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं अपने लिए। अपने लिए दूसरों से चाहते हो व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कोई झूठ न बोले, कोई गाली न दे, क्योंकि हमको बुरा लगता है। हमको बुरा लगता है तो सबको बुरा लगता है। अब चाहे जितनी भीड़ हो, अहम अकेले ही रहता है। मैं अकेला हूं चूंकि मालूम पड़ता हूं और अप्रिय नहीं हूं। तो दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जो अपना चाहता हो। जो चाहता हो वो नहीं होता है, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता है। क्यों वो नहीं होता है? ईश्वर की इच्छा होती है पूरी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। जो तुम चाहते हो वो भाता नहीं है, होता भी है तो भाता नहीं है, भाता है वो रहता नहीं। बड़ी समस्या है, भाता है वो रहता नहीं। जो पसंद है आपको वो रहता नहीं है, बड़ी समस्या तो ये है। और जो हमें पसंद है, जो हमें व्यवहार पसंद है दूसरे के प्रति, वही हमें करना चाहिए। हमें अगर अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा कोई है ही नहीं। अभी आप सुन चुके, तो दूसरा कोई नहीं है तब व्यवहार गलत क्यों हो? तो व्यवहार सही होना चाहिए। जो हम चाहते हैं दूसरों से, वही हमें भी करना चाहिए। ये बात निकली, वही हमें करना चाहिए जो हम चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, तो ऐसे सब चाहते हैं भला हो। सबकी मांग एक ही है, सबकी चाह एक ही है, सबकी मांग एक ही है। तो सबकी मांग है वो हमारी मांग है, चाह सबकी है वो हमारी चाह है। तो सांप बिच्छू भी भगवान ने बनाए इसलिए हैं, उपयोगी हैं वो। एक बार सुनते हैं सांप निकाल दिए गए सब देश से, तो गंदी वायु सांस लेते हैं सांप, तो सांप निकाल दिए गए तो वो गंदी गंदगी होगी। तो इसलिए उपयोगी वस्तु सब है, भगवान ने बनाई क्यों? इसलिए किसी के प्रति घृणा नफरत नहीं, द्वेष नहीं, सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। क्यों? सृष्टि भगवान ने एक ने बनाई है, एक ईश्वर ने सब सृष्टि बनाई। अभी आप सुन रहे थे, मछली में भी वही, कछुआ में भी वही, सब वही अवतार लेता है विविध प्रकार के। तब व्यवहार अच्छा होना चाहिए सबके प्रति, और सबसे प्यार होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं वो आदमी हमारे सामने ना आवे, अरे भाई क्यों न सामने आवे, ईश्वर ने बनाया क्यों यदि उसमें कुछ गुण न होता। गुण दोष तो सब में होते हैं, किसी में अधिक किसी में कम, किसी में एक दो ज्यादा होते हैं। सबने भगवान ने बनाया है सबको, और सबको शिक्षा दी है कि अपने जैसा व्यवहार करो, जो तुम चाहते हो दूसरों के प्रति करो। अच्छा, तो हम दूसरों के प्रति क्यों गलत व्यवहार करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे मन में द्वेष है। द्वेष और राग, एक के प्रति राग होता है, दूसरे के प्रति द्वेष हो जाता है। दूसरे के प्रति जहां द्वेष हुआ वहीं हिंसा की भावना आ जाती, क्रोध आ जाता है। तो ये क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये आप भी चाहते हैं, हिंसा धन में होती है। दूसरे का धन ले लेना, दूसरे की जोरू ले लेना, दूसरे का माल घसीट लेना, इससे हिंसा होती है। हिंसा गलत चीज जैसे है तैसे है, हिंसा गलत चीज जैसे क्रोध भी गलत चीज है, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसे व्यवहार करना चाहिए जिस व्यवहार से हम बने, ये सृष्टि मतलब है, अक्षर तत्व से सृष्टि बनाई। एक ईश्वर ने अनेक अवतार लेकर के ये बताया कि हमने ही सबको बनाया है, इसलिए सब प्रेम से रहो, प्रेम व्यवहार करो एक दूसरे के प्रति। ये सृष्टि का मतलब यही हुआ, सृष्टि एक ने बनाई और विविध प्रकार की बनाई, किसी के नफरत सांप बिच्छू से भी। क्यों? कि जब आप नहीं डरेंगे तो दूसरों को नहीं डराएंगे तो दूसरा भी आपको नहीं डराएगा। आप यदि नहीं डराएंगे तो दूसरा भी नहीं डराएगा। आप यदि नहीं डरते हैं तो दूसरा भी नहीं डरता। आप यदि सामर्थ्य रखते हैं कि हम अमुक को गोली मार दें तो तुम्हें भय लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हमें कोई मार न दे, मार न दे, इसीलिए आप रहेंगे सतर्क, हमेशा सतर्क रहेंगे। पुलिस वुलिस रहे, जगत गुरु शंकराचार्य जितने भी हैं सबके साथ पुलिस रहती है, उनको भय रहता है कोई ले न जाए, कोई सामान छुड़ाए न ले। साथी सामान पाने और बचाने में लगे रहते हैं जो लोग, उनको साथी सामान तो एक दिन जाएगा ही, साथी भी जाएगा सामान भी जाएगा, एक दिन जरूर जाएगा, एक दिन जरूर जाएगा। तो फिर उसकी सुरक्षा कैसी? सुरक्षा में रात दिन लगे रहते हैं। जो लोग साथी सामान को पाना और बचाना चाहते हैं वो सोच लें कि न रह सकोगे न रख सकोगे, न यहां दुनिया में रहोगे, जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे कहां काम चलेगा। एक माई कोई जल चढ़ाए थी शंकर जी पर, हे भोले बाबा जब तक गंगा जी में जमने जल रहा है तब तक हमारे नाती पोता बने रहा है, ऐसा कैसे बोले तुम ही नहीं रहोगी? जब तुम ही नहीं रहोगी तो नाती पोता रहने से क्या फायदा होगा? तो ना रह सकोगे ना रख सकोगे, ये सिद्धांत है। तो इसलिए सामान जोड़ो क्यों, किसी से नफरत क्यों करो? सबसे प्रेम व्यवहार करना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। ओम शांति। अब स्वामी जी कहेंगे।
कल आप परमात्मा से किस प्रकार से जगत उत्पन्न होता है उसका क्रम सुन रहे थे। पहले परमात्मा ने ये तप किया, उन्हें विचार किया, आलोचना की, ज्ञान हुआ और फिर ध्यान हुआ। तो पहले ध्यान हुआ तो उपचिति हुई, फिर अव्याकृत हुआ। उपचिति से अव्याकृत और अव्याकृत से हिरणगर्भ हुआ। हिरणगर्भ से आपने सुना था, हिरणगर्भ में ही सब कुछ समाया हुआ है। माने क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से युक्त है हिरणगर्भ। दृष्टि जीवों की समष्टि है हिरणगर्भ, उसमें अविद्या, काम और कर्म भी है, इन सबसे युक्त हिरणगर्भ हुआ। उससे फिर आपने सुना था कि हिरणगर्भ से नारायण प्राण हुआ, नारायण प्राण से अन्न हुआ और अन्न से मन हुआ और मन से मैंने अहंकार हुआ, अहंकार से पांच भूत हुए और पांच भूत जब हो गए तो इन भूतों से भोग भी हुए, भोग्य भी हुआ और भोक्ता भी हुआ। और भोगने के लिए कर्म हुआ जो अविनाशी बताते हैं, अमृत है अर्थात दीर्घ काल तक रहने वाला है, ये आपने सुना था। और वो परमात्मा जिस परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई है वो सर्वज्ञ है और सर्वविद है। सर्वज्ञ का मतलब है कि सामान्य रूप से वो सबको जानता है, और सर्वविद का मतलब यह है कि वो विशेष रूप से भी जानता है। थोड़ा थोड़ा भेद है। सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ सर्वविद यश ज्ञानमय तपः। सर्वज्ञ का मतलब है कि वो परमात्मा के दो रूप हो गए, एक सामान्य हो गया एक विशेष हुआ। तो सामान्य रूप से समस्त भूत भविष्य वर्तमान और जितने भी पदार्थ हैं उनको वो जानते हैं। विशेष माने हैं आपके और हमारे चींटी और ब्रह्मा के अंदर रह करके भी जो कुछ अंदर उठता है हमारे उसको भी प्रकाशित करते हैं, उसको भी जानते हैं। ये विशेष हुआ। फिर नारायण नाम होंगे, जब पदार्थ उत्पन्न होंगे तो उनके नाम होंगे, उनके रूप भी होंगे। इस प्रकार से ये आपके पहले खंड में मुंडक के ये पराविद्या के प्रसंग में ये बात बताई गई। और एक ये लक्षण पराविद्या के और अपराविद्या के बताए गए थे कि पराविद्या उसे कहते हैं जिससे जो नित्य परमात्मा है, जो अविनाशी है, जो अक्षर है, जो अखंड है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान जिस विद्या से होता है उसे परा कहते हैं। और कर्म धर्म का प्रकाश जिससे होता है उसे अपरा विद्या कहते हैं। तो परा विद्या इस खंड में कही गई। अब ये दूसरा खंड आरंभ करते हैं जिसमें आरंभ में अपरा विद्या का वर्णन है जिससे कर्म और धर्म प्रकाशित होता है, उस विद्या को कहते हैं। और ये अपरा विद्या समझ लेने पर परा विद्या समझ में आ जाती है। सांगा वेदा अपरा वेदोक्ता ऋग्वेद यजुर्वेद, ये पहले आपको कहे आए हैं कि ये जो चारों वेद हैं और उसके जो छह अंग हैं उस छह अंगों सहित ये अपरा विद्या है, वो आपको बताए आए हैं। अब इसमें आपको देखिए दूसरे खंड को आरंभ करते हैं तो अपरा विद्या में आपसे ये बात कही गई थी कि ये धर्म का और कर्म का प्रकाश करती है, किस प्रकार से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और किस प्रकार से व्यक्ति का कर्म ही धर्म हो जाता है। धर्म कोई अलग चीज नहीं है, कर्म के साथ ही धर्म होता है और कर्म से अधर्म भी होता है। तो जो शास्त्रीय कर्म है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुशासन के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करते हैं, जो अपने कर्म को कायदे से कर लेते हैं शास्त्र को देख करके, उस कर्म को ही धर्म कहते हैं। और ये इसलिए इसका वर्णन भी किया जा रहा है कि व्यक्ति अपने कर्म को कायदे से करके धर्म का अनुष्ठान हो जाएगा और उसे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और शुद्ध चित्त में ही पराविद्या का प्रकाश होता है, अशुद्ध चित्त में नहीं। नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति में और परमात्मा की देखने में कठिनाई ही क्या है। परमात्मा मालूम नहीं पड़ता है, ज्ञात नहीं होता है, तो उसका कोई न कोई जीवन में प्रतिबंध होगा। उस प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए, अच्छा अर्थात दुष्कर्म दुर्भाव की निवृत्ति के लिए सद्भाव की स्थापना और सत्कर्म का वर्णन कर रहे हैं। और बिना सत्कर्म के सद्भाव की स्थापना नहीं होती। दुष्कर्म की निवृत्ति शुभ कर्म से होगी। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, एक कांटा लगा हो तो आपको उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा लेना पड़ेगा। और जब वो पैर वाला कांटा निकल जाएगा तब उस कांटा को भी निकाल दोगे, फेंक दोगे। कांटे की उपयोगिता इतनी ही थी जो दूसरा कांटा लिया गया था कि पहले वाले कांटे को निकाल दे। वे इसी प्रकार से हमारे जीवन को कायदे से कायदे में कर दे वे, इसके लिए ये वेद में कर्म का वर्णन है। और जब कायदे से कर्म हो जाते हैं, चित्त की शुद्धि हो जाती है, तो परमात्मा को तो जैसे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमको आप देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, इस प्रकार से परमात्मा दिखता है। अच्छा एक आपको बात बता दूं, जो वेदांत में महाराज सदानंद ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात कही है। परमात्मा के संबंध में कि भाई परमात्मा समझ में नहीं आता है, परमात्मा दिखता नहीं है, तो उसका एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की किरणों से मेघ उत्पन्न होता है। जब मेघ आकाश में आच्छादित हो जाते हैं तो सूर्य भगवान नहीं दिखते हैं। पर इस बात को ये वेदांत सार को बनाने वाले सदानंद महाराज जी इस बात को ये कहते हैं कि वो मूर्खों को ही नहीं दिखते हैं सूर्य। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरकम यथा मन्नते निष्प्रभं चादि मूढ़ा, सदानंद जी के श्लोक बनाने। अब आप ये देखिए कि जब मेघ से आच्छादित हो जाए, और मेघ से तो फिर भी कुछ प्रकाश ज्यादा रहता है, पर आप देखिए घना कोहरा भी हो, सूर्य भगवान न दिखते हों तो भी सूर्य भगवान दिखते हैं। कैसे दिखते हैं कि यदि सूर्य भगवान नहीं दिखेंगे तो आपको मेघ नहीं दिखेगा, बादल नहीं दिखेगा। क्योंकि सूर्य के बिना यदि कोई अपनी आंख मात्र से कुछ देखता होवे तो सूर्य की तो यहां आवश्यकता ही न होती जीवन में। सूर्य के सहयोग के बिना नहीं दिखता कुछ, पक्की बात है। तो मेघ दिख रहा है आपको कि नहीं, बादल दिख रहे हैं ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि सूर्य नहीं दिख रहा है? क्योंकि सूर्य की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति पहले होती है, वस्तु की उपस्थिति बाद में होती है। यदि वस्तु पहले ही दिख जाए तो प्रकाश की जरूरत ही क्या रहेगी? पहले प्रकाश दिखेगा तब वस्तु दिखेगी। इसी प्रकार से पहले प्रकाश दिखता है तब मेघ दिखता है। सदानंद जी महाराज जी कहते हैं, घनच्छन्न घनाच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा यथा गंगन घन पटल निहारी झंप्यो भान कहे कुबिचारी। तो ये कुबिचारी आपसे ये बात बता रहा था कि इसी प्रकार से परमात्मा के संबंध में है। जैसे साफ साफ सूर्य नजर आता है, पर लोग कहते हैं कि सूर्य ढक गया, छिप गया, सूर्य नहीं दिखता है। इसी प्रकार से परमात्मा व्यक्ति को नहीं दिखता है। जब परमात्मा ही न नजर आएगा तो वस्तु ही नजर न आएगी, ये सूर्य का प्रकाश ही नजर न आएगा। क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी जड़ है, इसको इस प्रकाश का भी प्रकाशक परमात्मा ही है। पर प्रतिबंध क्या है? इस प्रकार से साफ सुथरा जो प्रकाश है परमात्मा का, जिसे सब कुछ जाना जा रहा है, एन सर्वम इदम विजानाति, जिसे सब कुछ जाना जा रहा है वही अनजाना है, इसमें कोई ना कोई प्रतिबंध होगा। तो आइए देखिए, कर्म के संबंध में आप पहले समझ लीजिए, अपरा विद्या समझ में आ जाएगी तो परा विद्या समझने में सुविधा होगी। तो आपसे ये बात कह रहा था कि पहले कर्म को हम कायदे से कर ले, बिना कायदे से बिना नियम के निर्माण नहीं होता है। जीवन के निर्माण के लिए जीवन को पहले कायदे में करेंगे। कैसे करेंगे? वैदिक कर्म के द्वारा। एक आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी उसमें बैठते हो,